संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। मैं हूं महबूब खान। 13 दिसंबर 2019 के इस अंक में शामिल है जलवायु परिवर्तन पर वार्षिक सम्मेलन COP25 मैड्रिड में जलवायु कार्रवाई तेज करने की चौतरफा पुकार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून पर जताई भेदभाव पूर्ण होने की चिंता। गाम्बिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार के खिलाफ लाए गए जनसंहार मुकदमे में आंग सान सूची ने रखा अपने देश का पक्ष। दुनिया ने गरीबी, भुखमरी और बीमारियों के खिलाफ की है अच्छी प्रगति, मगर अनेक मोर्चों पर नए प्रकार की असमानताएं, होगा एक इंटरव्यू। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अल्प पोषण से पीड़ित हैं करीब 50 करोड़ लोग, कैसे मिल सकती है इनको भुखमरी से राहत। और संसाधनों का सदुपयोग बढ़ाने के लिए एक नई मुहिम आई लिव सिंपली करने वाले सोनम वांगचुक के साथ एक खास बातचीत। हम आपको याद दिलाते चलें कि व्यापक दायरे वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही अपने मोबाइल फोन पर यूएन न्यूज रीडर ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में नीचे हिंदी भी नजर आएगी। आप न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसके जरिए प्रमुख समाचार आपको आसानी से हासिल होते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि ऐसे में जबकि विश्व में गहराते जलवायु संकट से करोड़ों लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है तो भविष्य में लोगों की आजीविका के साधनों को सुरक्षित रख पाना इस तरह के कायापलट कर देने वाले बदलावों पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह पृथ्वी पर ऊर्जा हासिल करते हैं और अपने संसाधनों का प्रबंधन किस तरह करते हैं। स्पेन के मैड्रिड शहर में इस सप्ताह हुए वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP25 में उन्होंने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन की दौड़ में अब भी हार रहे हैं, लेकिन हम दूसरा रास्ता चुन सकते हैं, जलवायु कार्रवाई का रास्ता और पृथ्वी व लोगों के कल्याण का रास्ता। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
मैड्रिड शहर में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को समाप्त होना है, लेकिन सहमति बनाने के लिए विचार विमर्श थोड़ा और लंबा खिंच सकता है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने संदेश में कहा,
Today is the last day of the COP25 in Madrid, and I appeal to the delegates of all member states.
मैड्रिड में COP25 बैठक का आज आखिरी दिन है और मैं सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि वो दुनिया को महत्वाकांक्षा का संदेश दें, अपने और हमारे उद्देश्यों को विज्ञान के अनुरूप बनाकर। महासचिव गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना कि इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए और समझौते की भावना को अपनाया जाए, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है। अब तक 73 राष्ट्रों ने अपने जलवायु कार्रवाई संकल्पों को और मजबूत बनाने की मंशा जाहिर की है। साथ ही 14 क्षेत्रों, 398 शहरों, 786 व्यवसायों और 16 निवेशकों ने कहा है कि वे वर्ष 2050 तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये स्पष्टता से दर्शाता है कि सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर जलवायु आपात स्थिति से निपटने की अहमियत और उसकी सख्त जरूरत को पहचाना जा रहा है। 177 कंपनियों ने कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने का संकल्प भी लिया है ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचा जा सके।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भारत के नए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये बुनियादी तौर पर भेदभावपूर्ण है। गौरतलब है कि अधिनियम भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना है। मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने शुक्रवार को जिनेवा में कहा कि संशोधित नागरिकता अधिनियम में 3 देशों, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया तेज करने का प्रावधान किया गया है। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने की बात कही गई है, लेकिन इसी तरह की सुरक्षा मुसलमानों को नहीं दी गई है जो उन देशों में अल्पसंख्यक गुटों से हों। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने हालांकि ये भी कहा कि भारत में नागरिकता संबंधी व्यापक कानून अब भी लागू हैं, लेकिन ये नागरिकता संशोधन अधिनियम लोगों द्वारा नागरिकता हासिल करने की योग्यताओं और दावों पर भेदभावपूर्ण असर डालेगा। प्रवक्ता का कहना था,
The amended law would appear to undermine the commitment to equality before the law enshrined.
संशोधित नागरिकता अधिनियम के जरिए उन संवैधानिक संकल्पों को कमजोर या नजरअंदाज करने की कोशिश नजर आती है जिनके जरिए कानून की नजर में सभी को बराबरी हासिल है। इसके अलावा इस अधिनियम के जरिए सिविल व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कोविनेंट और नस्लीय भेदभाव को खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने के प्रयास नजर आते हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जर्मी लॉरेंस के शब्द। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत इन संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला एक प्रतिभागी देश है। ये संधियां नस्ल, जाति और धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को निषिद्ध करती हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जर्मी लॉरेंस ने कहा कि प्रवासियों को अपने प्रवासन दर्जे के आधार पर किसी तरह के भेदभाव के बिना सम्मान और अपने मानवाधिकारों की संरक्षा व गारंटी का अधिकार हासिल है। प्रवक्ता का कहना था कि केवल 12 महीने पहले ही भारत ने सुरक्षित, नियमित और व्यवस्थित प्रवासन पर हुए ग्लोबल कॉम्पैक्ट का समर्थन किया था। इस ग्लोबल कॉम्पैक्ट में प्रवासियों की कमजोर और नाजुक स्थिति में जरूरतों के लिए देशों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि मनमाने तरीके से प्रवासियों को बंदी ना बनाया जाए, उन्हें सामूहिक रूप से अलग थलग ना किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासन संबंधी प्रशासनिक उपाय मानवाधिकारों की हिफाजत करने के तरीकों पर आधारित हों। प्रवक्ता का कहना है कि वैसे तो कहीं भी सताए हुए लोगों के समूहों को संरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य स्वागत योग्य है, लेकिन ऐसा इंतजाम एक राष्ट्रीय शरण व्यवस्था के जरिए की जानी चाहिए जिसका आधार बराबरी के सिद्धांत और गैर भेदभावपूर्ण तरीकों पर टिका हो। साथ ही ये व्यवस्था उन सभी लोगों व समूहों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जो किसी भी तरह सताए हुए हैं या उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मगर उनकी नस्ल, जाति, राष्ट्रीय मूल या किसी भी अन्य आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।
म्यांमार की राजनीतिक नेता आंग सान सूची ने संयुक्त राष्ट्र के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश होते हुए कहा है कि उनका देश रखाइन प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर युद्धापराध हुए हैं तो सेना पर मुकदमा चलाया जाएगा। गौरतलब है कि गाम्बिया ने म्यांमार की सेना पर रोहिंग्या लोगों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार करने और युद्धापराधों के आरोपों में ICJ में मुकदमा दायर किया है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख कानूनी अंग है जहां देशों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची ने बुधवार को न्यायालय में पेश होकर अपने देश म्यांमार का बचाव किया। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की तरफ से गाम्बिया द्वारा दायर इस मुकदमे में म्यांमार की सेना और वहां के सुरक्षा बलों पर मुस्लिम बहुल रोहिंग्या समुदाय के लोगों के खिलाफ जनसंहारक कार्रवाई करने के आरोप लगाए गए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सूची ने बुधवार को ICJ की आरंभिक कार्रवाई शुरू होने के दूसरे दिन कहा कि अगर युद्धापराध हुए हैं तो उनके लिए देश की सैन्य न्याय व्यवस्था के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के जजों के सामने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में आंग सान सूची ने रखाइन प्रांत में रहने वाले मुस्लिम बहुल रोहिंग्या समुदाय के लोगों और बौद्धों के बीच कई दशकों से चले आ रहे तनाव का जिक्र किया। ये तनाव 25 अगस्त 2017 को उस समय विस्फोटक होकर भड़क उठा जब म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी। म्यांमार की सेना को तत्मदाव भी कहा जाता है। सेना का कहना है कि उसने ये दमनात्मक कार्रवाई अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के पृथकतावादियों द्वारा एक पुलिस चौकी पर किए गए घातक हमले के जवाब में की थी। इस हिंसक कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि लगभग 7 लाख रोहिंग्या लोग सुरक्षा के लिए बांग्लादेश पहुंच गए। उनमें से अनेक लोगों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र जांचकर्ताओं को बताया था कि उनके साथ अमानवीय हिंसा और जुल्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया ने गरीबी, भुखमरी और बीमारियों के खिलाफ अच्छी प्रगति की है, लेकिन अब शिक्षा, तकनीक और जलवायु परिवर्तन के मोर्चों पर नए प्रकार की असमानताएं पैदा हो रही हैं। रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी के लिए दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने UNDP के भारत कार्यालय में विकास अर्थशास्त्री स्वास्तिक दास से बातचीत की और पूछा कि रिपोर्ट का शीर्षक बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे है, इसका क्या अर्थ है।
तो देखिए, रिपोर्ट में एक नए तरह के एनालिसिस की कोशिश की गई है जहां पे हम तीन तरह से देखना चाहते हैं कि इनइक्वालिटीज को बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड इनकम और बियॉन्ड टुडे देखनी चाहिए। मैं एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करूंगा। तो पहले आते हैं बियॉन्ड इनकम। जब भी इनइक्वालिटी की कोई असेसमेंट होती है, यूजुअली हम वेल्थ या इनकम को लेके बात करते हैं। इंडिया में खास करके सिंस इनकम डेटा इतना आसानी से नहीं मिलता है, हम अपने कंजम्पशन डेटा पे इनइक्वालिटी नापते हैं। बट हमारा मानना है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिखा गया है कि हमें इन दिस रुपी वे और डॉलर वे ऑफ मेजरिंग इनइक्वालिटी, इससे थोड़ा आगे जाना है। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है ही, बट उसके अलावा भी इनइक्वालिटी के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ही इतने सारे डायमेंशंस हैं, एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो ये हेल्थ और एजुकेशन भी तो मतलब बियॉन्ड इनकम जा रहे हैं, हम पहले से ही जा रहे थे HDI में। बट इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि और भी चीज़ है, जैसे डिग्निटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। एंड ये सिर्फ हम अगर इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी के नज़रिए से अगर देखें तो इन सब ये सब चीज़ निकल के नहीं आएगी। तो ये एक पीपल सेंटर्ड व्यू को दिमाग में रखते हुए ये बियॉन्ड इनकम कहा गया है। अब आते हैं अगर हम बियॉन्ड एवरेजेस की बात करें, तो जैसे कोई भी एवरेज मेजर, जैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी एक एवरेज मेजर ही है, बट एवरेज मेजर में कभी कभार और भी मतलब गहराइयाँ छुपे रहते हैं। जैसे कि मतलब मान के चलिए कि एक सिंपल एवरेज दो कंट्रीज़ की HDI सेम हो सकती है, बट एक कंट्री में शायद इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि ठीक है, हम समरी मेजर्स, हम एवरेजेस के भरोसा तो लेंगे, वरना हर एक पॉइंट पर हर चीज़ के बारे में बात करने की तो क्षमता नहीं है किसी में, तो इसलिए हम एवरेजेस के साथ बात करते हैं, एवरेजेस के यूज़ लेते हैं। बट हमारा जो एनालिसिस है, वी नीड टू गो बियॉन्ड जस्ट लुकिंग एट एवरेजेस। अगर हम बियॉन्ड टुडे बोले, तो ये रिपोर्ट खास करके ग्लोबल रिपोर्ट जो है, ये कहना चाह रही है कि जैसे एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है रिपोर्ट का कि एक कन्वर्जेंस हो रही है इन बेसिक कैपेबिलिटीज़। तो कैपेबिलिटीज़ क्या होती है? कैपेबिलिटीज़ है मतलब जैसे कैपेबिलिटीज़ नापा जाता है थ्रू हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारी HDI में थे। तो उसमें देखा जा रहा है कि कुछ हद तक, अभी तक हुआ नहीं है कन्वर्जेंस, बट कुछ हद तक जो सबसे पिछड़े हुए थे ट्रेडिशनली, वो कैचअप कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम एक डाइवर्जेंस शुरू हो रही है इनहांस कैपेबिलिटीज़ की। जैसे कि एक पॉइंट में माना जाता था कि एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, पर अगर है तो गुड, इट्स गुड दैट यू हैव इट। बट अब एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन मस्ट हैव पे आ गई है। सो वी नीड टू लुक बियॉन्ड टुडे, आज के जो नीड्स है उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा। जैसे आप हमारे देश को ही देख लीजिए, मैं ग्लोबल लेवल से अब इंडिया लेवल पर अगर आओ, तो हमारे देश में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर बहुत चर्चा करते हैं। हालांकि ये एक डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को डिविडेंड बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और अगर हम पूरा कंट्री को ना देख के सिर्फ हमारे स्टेट्स को देखें, तो खास करके डेमोग्राफिक जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे क्लासिकल पिछड़े हुए स्टेट्स जो है, UP, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इन सब जगह है। आज भारत में अगर कोई, इंडिया में अगर कोई मतलब हम जो बच्चे हैं 15 साल से कम, उनको देखें, मतलब दो में से एक बच्चे 50% बेसिकली इन पांच स्टेट्स में से है। तो हम जब इनइक्वालिटीज़ को सोचेंगे, हम इनके बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके हमारी वर्कफोर्स बनेगी। तो यही रिपोर्ट का मानना है कि बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा के दूसरे लक्ष्य भुखमरी का अंत को वर्ष 2030 तक हासिल करना है, तो क्षेत्र में अल्प पोषण से पीड़ित 30 लाख लोगों को हर महीने भुखमरी के चक्र से बाहर निकालना होगा। संयुक्त राष्ट्र की चार एजेंसियों की एक नई साझा रिपोर्ट में ये निष्कर्ष सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
अल्प पोषण जैसी चुनौती की विकरालता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भुखमरी और कुपोषण के सभी रूपों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है। ये पहली बार है जब सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों के केंद्र में पोषण को रखने के लिए क्षेत्र में निर्णायक और समन्वित ढंग से प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों में नाटेपन, कुपोषण और शारीरिक व मानसिक विकास के विषय पर रिपोर्ट में निराशाजनक आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट कहती है, क्षेत्र में नाटापन और लंबाई के हिसाब से वजन कम होने के मामले अब भी बहुत ज्यादा हैं। क्षेत्र के अधिकांश देशों में नाटेपन की दर 20% से ज्यादा है। अनुमान है 5 साल से कम उम्र के 7,72,00,000 बच्चे 2018 में नाटेपन का शिकार थे और 3,25,00,000 बच्चों का वजन लंबाई के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा क्षेत्र में बच्चों और वयस्कों में बढ़ता मोटापा और जरूरत से ज्यादा वजन होने के रुझान मौजूदा स्थिति को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था UNEP ने भारत में पर्यावरण कार्यकर्ता और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक के साथ मिलकर आई लिव सिंपली नामक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत एक वेबसाइट के जरिए लोग सतत जीवन शैली का संकल्प लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकेंगे। इसका नारा महात्मा गांधी के वक्तव्य से लिया गया है, लिव सिंपली सो दैट अदर्स कैन सिंपली लिव। इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए UN न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा ने बात की सोनम वांगचुक से, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स के संस्थापक भी हैं। उनसे पहला सवाल यही पूछा गया कि ये आई लिव सिंपली अभियान दरअसल है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी।
मैं लद्दाख से हूँ, जहाँ पर ये पर्यावरण के परिवर्तन आ रही है जलवायु में, उसके असर खासकर दिखाई देता है और हम एक तरह से शिकार हैं, पहले शिकार हैं, बाद में सब होंगे, मगर जो पहाड़ों में हैं वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं तो वो सब पिघल के खत्म हो रहे हैं, तो पानी की कमी हो रहा है। पिघल वो इस तरह रहे हैं कि बाढ़ आ जाती है, तो कभी बाढ़ तो कभी अकाल, ये बदलते रहता है। तो हम वहाँ पर उसके लिए कई तरकीबें करते रहते हैं कि कैसे इसको आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाएं या फिर कैसे इसकी बाढ़ को रोकने के उपाय करें, मगर अब हमें लगता है कि हम वहाँ पहाड़ों में कुछ छोटा छोटा करते रहें, मगर जो इसके कारण हैं वो अगर दिन दुगने रात चुगने बढ़ते रहे बड़े शहरों में, जो कि उनकी जीवन शैली है लोगों की बड़े शहरों में, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रही है, तो हम सिर्फ वहीं के उपाय करते रहेंगे और दुनिया उसी तरह चलती रहेगी। तो हमने कहा क्यों ना हम दुनिया को बदलें। कहने में अजीब लगता है मगर सच में दुनिया को और दुनिया के लोगों को जाती तौर पर उनके जो आदतें हैं वो बदलने की जरूरत है। तो ये आई लिव सिंपली एक ऐसी मुहिम है जिसमें कि लोगों को, खासकर बड़े शहरों में जो हैं जिनके कारण ये सब ज्यादा होती है, उनको अपने जीवन शैली बदलने की हम अपील करते हैं। ऐसे जीवन जिए सादगी से कि और लोग कम से कम जी पाए। तो हमारी वही हालत है कि हम कहना चाहते हैं बड़े शहरों से कि आप जिंदगी ऐसे जिए कि कम से कम हम पहाड़ों में जी तो पाए। तो इसे हम ऐसे चाहते थे कि लोग इसमें हंसी खुशी से भाग ले सकें, इसे एक मातम की तरह हम नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे। तो हमने इसे क्राउड फंडिंग कैंपेन की तरह किया। अब क्राउड फंडिंग आप में से जिनको पता हो, ये इंटरनेट पर मगनी एक ऐसा चंदा जमा करने की वो है तरकीब है, जिसमें कि बहुत से कॉजेज, बहुत से अभियानों में पैसे जमा किए जाते हैं। हम इस बार बिना पैसे के चंदा कर रहे हैं। चंदा हम पैसों का नहीं, चंदा हम अच्छे कर्मों का कर रहे हैं कि आप सिर्फ चंदा पैसे ही नहीं, आप अपने जीवन शैली को बदलें तो पैसे से भी ज्यादा आप एक योगदान दे पाएंगे। अगर आप ये कहें कि मैं गाड़ी कम चलाऊंगी, उसके जगह पे मैं बाइसिकल चलाऊंगी, या हवाई जहाज की जगह पे रेल से जाऊंगी, या खाना जाया नहीं करूंगी, मांसाहारी से शाकाहारी हो जाऊंगी, तो ये बड़ा योगदान है धरती के लिए पैसे से भी। तो ये क्राउड फंडिंग कैंपेन आई लिव सिंपली में ऐसे कर्म, जो अच्छे कर्म है, उनको आप पैसे या रुपए में प्रस्तुत करते हैं कि अगर आप शाकाहारी होते हैं तो आप $1,000 या 50,000 70,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। हंसी खुशी के एक अभियान से हम लोगों को और खासकर युवाओं को जोड़ना चाहते हैं ताकि वो भी धरती के लिए अपना योगदान दे पाएं और उस पर फिर वो अमल भी करें। जो दुनिया के सारी आबादी है 7 बिलियन की, वो अगर अपने जीवन शैली को बदले तो हवाएं साफ होंगी, परिंदे जानवर फिर से सांस ले पाएंगे।
इस इंटरव्यू को आप हमारी वेबसाइट पर वीडियो में भी देख सकते हैं, पता है news.un.org/hi। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति दीजिए, अपना और अपने आसपास सभी का खूब ख्याल रखिएगा।